मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस 19 नवंबर 2015 के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी क्रम में स्वागत करता हूं मैं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोनों साथियों के नाम हैं, दिल्ली से हैं मनोज कुमार और बड़ोदरा से हैं रंजीत कुमार पांडे। तो मनोज और रंजीत, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि हम लोग लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत करें, एक सूचना है जिसे मैं एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मानता हूं। सूचना है मित्रों कि अभी जब यहां अक्टूबर में क्लासेस हुई थी तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हम लोगों को जो एक जानकारी दी उससे हम लोग बड़े मतलब भौचक्के रह गए और सच पूछिए तो बहुत दुखी भी हुए। सूचना ये थी कि उन्होंने बताया कि बहुत सी जगहों पर AFE IAS के नाम से क्लासेस शुरू हो गई हैं जो ये दावा करती हैं कि उनका AFE भोपाल से एफिलिएशन है और उनको टेंडर मिला है और टेंडर उन्होंने भरा है, उनको हम लोगों ने क्लासेस चलाने की अनुमति दी हैं। कुछ दोस्तों ने ये भी बताया कि AFE के नाम से नोट्स बिक रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी खबर दी कि जो स्पेशल ऑडियो जो प्रोवाइड किए जाते हैं फर्स्ट बैच सेकेंड बैच को और अब डेफिनेटली थर्ड बैच को भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी बाजार में बिक रहे हैं। मित्रों, इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो AFE है, हमारी जो एकेडमी फॉर एक्सीलेंस है, उसका किसी पूरे देश में कहीं के किसी से किसी भी क्लास से कोई उस तरह का संबंध नहीं है, किसी भी तरह का संबंध नहीं है। हम लोगों से किसी ने कोई इस तरह के क्लासेस के लिए कांटेक्ट नहीं किया है और ना हम उन्हें किसी तरह की मदद देते हैं, चाहे वो गाइडेंस के फॉर्म में हो। तो प्लीज़ इस बारे में हमारे जो सभी श्रोता हैं वो थोड़ी सी सतर्कता बरतें। इसमें हमारी कहीं कोई उनसे संबंधित कोई भी मामला बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है, करता है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी सूचना आप लोग मेरे मेल पर देने की कोशिश करें। इससे हम लोगों को चीजों को समझने में मदद मिलेगी और इस तरह के किसी भी झांसे में हमारे श्रोता न पड़ें। नोट्स के मामले में भी बात बिल्कुल यही है फ्रेंड्स कि AFE ने कोई नोट्स तैयार नहीं किए हैं, कोई नोट्स उसने मार्केट में लॉन्च नहीं किए हैं, किसी के माध्यम से भी कोई रिटेन नोट्स नहीं बिक रहे हैं और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारे जो क्लास में जो स्टूडेंट आते हैं उनसे हमारा वायदा होता है कि हम उन्हें साल भर तक 50 स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जो उन्हें हर सप्ताह एक एक करके दिया जाता है, तो वो उन क्लास स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कैसे बिक रहे हैं और क्या हो रहा है। मित्रों, तो ये एक सूचना मात्र है और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एकेडमी फॉर एक्सीलेंस का, चाहे वो क्लास के फॉर्म में हो, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो या ऑडियो गाइडेंस के फॉर्म में हो, किसी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्लीज इस बारे में आप लोग सतर्क रहें और किसी भी इस तरह के भुलावे में ना आए। हां, अगर आपको अपनी तरफ से उनकी चीजें ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप उनके साथ व्यवहार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन प्लीज उसमें AFE को आप लोग माइनस करके देखें। तो मित्रों, ये एक सूचना थी जो ऊपर से तो शायद छोटी सी लग रही हो, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बड़ी सूचना है ताकि आप लोग अपने आप को एक तरीके से जो विश्वास एकेडमी के प्रति आप लोगों का है वो लगातार बना रहे और सच पूछिए तो उस विश्वास को इस तरीके से अगर कोई कोशिश करता है भुनाने की या उसका गलत इस्तेमाल करने की, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में हम लोगों को अगर खबर देंगे तो वह एकेडमी के प्रति आपके विश्वासों को और मजबूत बनाने में हम लोगों की मदद करेगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट पर। आपको ध्यान होगा कि लगभग शायद 3 दिन पहले की बात है, मैंने बताया था कि सईद जाफरी साहब जो गांधी फिल्म में सरदार पटेल का जिन्होंने रोल निभाया था और खासकर शतरंज की खिलाड़ी में रोल करने के लिए जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी वो नहीं रहे। और मैंने उसी दिन आपसे एक वायदा किया था कि इनका लिखा हुआ एक छोटा सा अंश भास्कर में प्रकाशित हुआ, दैनिक भास्कर में, और वह मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने आपसे वायदा किया था कि उसके बारे में मैं कभी आपसे चर्चा करूंगा। तो बहुत पुराना हो जाने के बाद जरा वो चीज़ें थोड़ी सी बासी सी भी लगने लगती हैं। तो मैं आज सईद जाफरी साहब के उस अंश को आज के लाइफ मैनेजमेंट में पढ़ रहा हूं। इसके बाद हम लोग फिर इस टॉपिक पर थोड़ी सी बातें करेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मैं हिस्सा पढ़ रहा हूं इसमें आप दो चीजें देखें। नंबर एक कि किस तरह से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अपने अनुभवों को फिलॉसफी में कन्वर्ट कर सकता है, राइटिंग में कन्वर्ट कर सकता है, ये पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज का कमाल होता है वो क्या होता है। मित्रों, इसमें आपको भाषा बहुत सरल लगेगी, बड़ी सहज लगेगी, लेकिन वो ऐसी बहती हुई भाषा है जिसको आप रिदमिक लैंग्वेज कह सकते हैं, जो है तो प्रोज में लेकिन उसमें आपको पोएट्री दिखाई देगी। न तो भाषा में आपको कठिन शब्द मिलेंगे, न भाषा के जो वाक्य हैं वो बड़े लंबे लंबे मिलेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई यहां भाषा का प्रदर्शन हो रहा है। आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आदमी अपने दिल की सीधी सच्ची बातों को बड़े सहज शब्दों में दूसरों के सामने रख रहा हो। और मैं समझता हूं मित्रों, ये शायद भाषा की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह अपनी बातों को कितनी सरलता के साथ पेश कर पाती है। ये बात मैं आप लोगों से खासकर इसलिए शेयर कर रहा हूं कि चाहे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें कि हम दूसरों को कैसे अपनी बातचीत से प्रभावित कर सकते हैं, मसलन जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे तो आपको उन्हें प्रभावित करना है, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, मतलब एक नेचुरल तरीके से, कि आप कितना अच्छा प्रभाव उनके दिमाग पर डालकर कमरे से बाहर निकलते हैं। नो डाउट कि जब आप राइटिंग करते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, स्पेशली अगर मैं ऐसे की बात करूं तो वहां भी भाषा का कमाल बहुत बड़ा काम करता है। तो मित्रों, इस लिहाज से आप इसको देखिएगा। और अगर मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो याद रखिए कि इसका संबंध केवल इंटरव्यू से नहीं है, इसका संबंध हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से भी है कि हमें दूसरों से कैसे बड़े सरल सहज तरीके से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बड़े बड़े कठिन शब्दों के आडंबर को लेकर के चलते हैं और सोचते हैं कि ये बड़े बड़े शब्दों के चट्टानों से हम सामने वाले को आहत कर देंगे, धाराशाही कर देंगे, तो शायद हम गलत समझते हैं। तो यहां आपको वो भी खूबसूरती दिखाई देगी और संबंधों की एक फिलॉसफी तो आपको यहां मिलेगी ही। तो मित्रों, इस खूबसूरत अंश को मैं पढ़ता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एक छोटा सा ही अंश है लेकिन मेरे दिल के चूंकि बहुत करीब मुझे ये लगा, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि शायद ये आप लोगों के भी दिल के करीब हो, तो मुझे कम से कम अपने दिल की बात आप तक पहुंचानी ही चाहिए। तो मित्रों, अब मैं शहीद साहब के वर्ड्स में ही आप पढ़कर सुना रहा हूं। मैं 19 साल का था जब मेहरुनिमा से शादी हुई, वो 17 की थी। मैं ब्रिटिश संस्कृति पर मुग्ध था, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, महंगे सूट पहनना शगल था, शिष्टाचार तो ताक पर रख दिया था। मेहरुनिमा ठीक उलट थी, आज्ञाकारी पत्नी, उदार मां और अच्छी होम मेकर, पर वो नहीं जो मैं चाहता था। मेरी सलाह भी उसे बदल न सकी। इस कोशिश में हम दूर होते गए और अंत में अलग हो गए। इस बीच मैं जेनिफर को चाहने लगा, बाद में हमने शादी भी कर ली, पर 6-7 महीने में ही मुझे महसूस होने लगा कि जेनिफर को मेरी फिक्र ही नहीं है, उसे तो उसकी महत्वाकांक्षाओं की चिंता थी। अब मुझे मेहरुनिमा का अपनापन याद आने लगा। मैंने कभी मेहरुनिमा और बच्चों की ओर पलट कर नहीं देखा था। 7 साल बाद मैंने शेफ मधुर जाफरी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा। मैं उस महिला की तस्वीर देख दंग रह गया, वह मेहरुनिमा ही थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी और नाम बदल लिया था, अब अमेरिका में थी। मैं उससे मिलने पहुंचा तो उसने मना कर दिया, बच्चे सिर्फ एक बार बात करने को तैयार हुए। उसने मुझसे कहा, नए पिता जानते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, उन्होंने मां को बदला नहीं, जैसी हैं वैसी स्वीकार कर लिया, इसी ताकत ने मां को आत्मनिर्भर बना दिया। तब मुझे समझ आया कि खुलेपन की वजह से उनकी शादी टिक पाई, जबकि मेरे स्वार्थ ने उसके व्यक्तित्व को कुचल दिया था, इसलिए रिश्ते टूट गए। सच तो यह है कि मैंने सिर्फ खुद से प्यार किया, और जो खुद से प्यार करते हैं वह दूसरों को प्यार कर ही नहीं सकते। मित्रों, ये छोटा सा अंश सईद जाफरी साहब का लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। पहली बात जो मैंने भाषा के कमाल की बात कही थी, उसे आप महसूस करने की कोशिश कीजिए, केवल सुनिए मत, ये चीजें महसूस करने की होती हैं, संवेदनाओं के स्तर पर ले जाकर के इन्हें अनुभव किया जाता है, तब आप इनका सच्चा स्वाद ले सकते हैं। और अभी मित्रों, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप यकीन करेंगे कि मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। इसकी भाषा की मधुरता, विचारों की गहराई, ईमानदारी और एक तरह से लाइफ की फिलॉसफी के सच्चा प्यार क्या होता है। तो मित्रों, इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये है कि जिंदगी में जो हमें चाहते हैं, याद रखिए, वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमें चाहते हैं, बस खत्म। दूसरी और कोई चीज नहीं होती, और हमारे अपने लोग वही होते हैं जो हमें चाहते हैं, या यूं कह लिए कि जो हमें चाहते हैं वे ही हमारे अपने होते हैं। हमारे साथ दिक्कत यह होती है कि हम अपने को केंद्र में रख लेते हैं, हम अपने को सेंटर में रख लेते हैं, और हम अपने चाहने का मूल्यांकन मालूम है कैसे करते हैं। हम अपने चाहने का मूल्यांकन इस आधार पर कहते हैं कि मैं जो जो चाह रहा हूं, जो जो मुझे पसंद है, अगर सामने वाला बिल्कुल वही वही करता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह मुझे चाहता है, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह सीधे सीधे इस बात का प्रमाण है कि वह मुझे नहीं चाहता। और यहां आकर के सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं, चाहे वो रिश्ते दोस्तों भाई बहन के हों, माता पिता के हों, मां बाप के हों, बेटे बाप के हों, भाई भाई के हों, चाचा ताऊ के हों, पड़ोसी के हों, दोस्तों के हों, किसी के भी हों। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाहे वो पति पत्नी के ही क्यों ना हो। मित्रों, पति पत्नी के रिश्ते में सबसे बड़ी बात समर्पण की कही जाती है, लेकिन वो समर्पण क्या है? तो समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल मौन हैं और सामने वाला जो कह रहा है वही हम मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो दोनों की तरफ से होना चाहिए, पति पत्नी के प्रति समर्पण करे और पत्नी पति के प्रति समर्पण करे। लेकिन जो सच्चा समर्पण है वो यही है कि हम बहुत से मामलों में एक दूसरे की चाहत को अपनी चाहत बना लेते हैं और इसके बाद उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, बस खत्म। वहां फिर ये जो स्वतंत्रता होती है, ये उस प्यार को, उस प्रेम को, उस चाहत को, उस रिश्ते को इतने जबरदस्त मजबूत बना देती है कि फिर मित्रों, अगर कोई तोड़ना भी चाहे तो वह टूट नहीं सकता। हमारा सबसे बड़ा संकट यही है, जिंदगी का संकट यही है कि हम खुद को तो नहीं बदलते, लेकिन चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए। केवल सामने वाला ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बदल जाए। और कैसे बदल जाए? हमारे हिसाब से बदल जाए, जो कतई संभव नहीं है। बहुत सामान्य सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है कि आप अपने आप को बदल लीजिए, आप देखेंगे कि सारी दुनिया आपके लिए बदल चुकी है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, दुनिया से चाहते हैं कि वो अपने आप को बदले, और यही हमारे जीवन का मित्रों सबसे बड़ा संकट पैदा होता है। दोस्तों, आप सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और याद रखिए कि आप अभी जो हैं उसी के अनुकूल रहकर आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते। आपको अपने आप को सिविल सर्विस के अनुकूल बदलना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप सही मायने में इसकी तैयारी कर पाएंगे। और इसकी तैयारी करने के प्रोसेस में ही, जिसे मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं, आप एक सिविल सर्वेंट बन ही चुके होंगे। ये परीक्षा ऐसी है जो आपको बदल देती है, और यदि इसकी तैयारी के दौरान अपने आप को आप बदला हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ खामी तो रह गई है। और ये थोड़ी सी खामी क्यों ना हो, लेकिन आपकी सफलता और असफलता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में ज्यादा तो कुछ खबरें नहीं है, एक दो ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। जो पहली खबर थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विस के लिहाज से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट खबर लगी दोस्तों, वो थी खासकर गन्ना उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा लिया गया एक निर्णय। आप लोगों को, खासकर जो इस ऑडियो को थोड़े से लंबे समय से सुन रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारे जो गन्ना उत्पादक हैं, जो गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं, वो कितने जबरदस्त संकट में हैं। लगातार गन्ने का रकबा बढ़ता चला जा रहा है। जब गन्ना पैदा होता है तब इतना ज्यादा पैदा होता है कि यहां तक कि वो जब अपने खेतों से मील तक, जो शक्कर की मीलें हैं, शुगर मील्स हैं, वहां तक ले जाने का खर्चा तक नहीं निकल पाता। और नतीजा ये होता है कि कुछ साल तो ऐसे भी हुए हैं जबकि गन्ने के खड़े हुए खेतों में आग लगा दी गई, क्योंकि उसमें कटाई और वहां तक ले जाने का ही जो खर्चा था वही वहां मील वालों से नहीं निकल पाता था। और सच पूछे तो कहीं ना कहीं हमारी जो शुगर मील है, जो शुगर इंडस्ट्री है, वो इस प्रकार से एक तरीके के दबाव में भी है और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में भी है। नतीजा ये होता है कि जो शुगर मील है वो अब प्रॉफिट में नहीं होते, गन्ना वो किसानों से ले लेते हैं ये कहकर कि हम बाद में इसका भुगतान करेंगे, और फिर वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं आते और बेचारे किसान देख ठगे के ठगे रह जाते हैं। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी असिस्ट किया कि जो गन्ना के जो शुगर मिल मालिक थे उनको अपनी तरफ से पैसा दिया। एक बार तो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए दिया था इंटरेस्ट फ्री, और ये कहा था कि ये आप गन्ना के किसानों को दे दीजिए, बाद में हमें लौटा दीजिएगा, हम इस पर कोई ब्याज नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जो गन्ना उत्पादन है भारत में एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, और उसको देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है, और वो ये कि वो हर किसान को 4.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी देगा। 4.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, इसका मतलब यह हुआ कि उनका, आपने न्यूज में सुना भी होगा कि इससे जो गन्ना मिल मालिक हैं उनको थोड़ा सा गन्ना सस्ते में मिल सकेगा और वो एक तरीके से शुगर के मामले में बाजार में कंपटीशन कर सकेंगे। तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, जो मिल मालिक है उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और नो डाउट कि किसानों को भी सपोर्ट मिलेगा। मित्रों, आप कह सकते हैं कि गन्ने के में जो शुगर मिल है इनको इस तरह से सपोर्ट देने की क्या जरूरत है। कभी कभी हमारे दिमाग में बड़े सहज तरीके से यह सवाल पैदा होता है कि भाई ये तो बिजनेस का मामला है, किसानों से आप खरीदिए और अपना शुगर मिल चलाइए, और अगर नहीं चला पा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में ये बात आती है, लेकिन फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अगर इस तरीके से सोचेगी तो सच पूछे तो एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत काम कर रही होगी। क्योंकि देखिए, डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं कि जो शुगर मिल है वो एक किसी मिल मालिक का है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का है जो उससे प्रॉफिट कमा रहा है, ये उसकी एक निजी, उसका एक निजी व्यापार है, निजी उद्योग है। लेकिन मित्रों, ये जो निजी उद्योग होते हैं इनका एक बड़ा सोशल रोल भी होता है, एक सामाजिक भूमिका भी इनकी होती है, इस मायने में कि वहां जितने लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उतने मजदूर, उतने लोगों को वो रोजगार प्रोवाइड कर रहा है, वो मील उतने लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। यदि एक व्यक्ति को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है तो आप मान करके चले कि उससे पूरा परिवार चलता है, यानी 5 लोगों का पेट भरता है। फिर यही शुगर मिल जब शुगर पैदा करते हैं तो कस्टम ड्यूटी देते हैं, और दुनिया भर की जो इकोनॉमी एक्टिविटीज होती हैं, जो इससे जुड़ी हुई इकोनॉमी एक्टिविटीज होती हैं, वो पैदा होती हैं, और उनमें फिर से रोजगार मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है जिसका उपयोग हम देश के आर्थिक विकास के लिए करते हैं। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में जब किसी भी मिल पर संकट आता है, चाहे वो सरकारी अगर मिल है तो नेचुरली की सरकार उसे अपनी तरफ से बचाने की कोशिश करती ही है, लेकिन अगर प्राइवेट पर भी आता है तो सरकार की कोशिश होती है कि उसे किस तरीके से बचाया जाए, और फिर वो अपने कदम पीछे नहीं रखती। तो ये जो गन्ने का जो मामला है आपको थोड़ा सा इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय कृषि व्यवस्था है, भारतीय कृषि व्यवस्था पर अब सीधे सीधे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि नहीं पूछे जाते हैं, अब वो स्पेसिफिक होते हैं और बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, बहुत पहले तो, कि जो खासकर इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से बातें की थी कि जो मानसून का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, उसका क्या आधार हो, कैसे किसान उबरे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किसान, चाहे वो कहीं पूरे देश के कहीं के भी हो, चाहे वो गन्ना उत्पादक हो या कपास उत्पादक हो या आपके सोयाबीन उत्पादक हो, लगातार सुसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर आर्थिक बोझ इतना ज्यादा हो रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि अगर हम किसानों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बट नेचुरली कि हमारा पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ध्वस्त हो जाएगा। और अगर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ध्वस्त हो गया तो आप सोच करके देखिए कि 60% लोग इस पर आधारित हैं, और फिर हमारी जो इंडस्ट्री भी है वो भी बहुत बड़ी, उसका बहुत बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में जो मानसून की वजह से जो सारा का सारा सारी गड़बड़ी होती है कृषि व्यवस्था में, तो उसको का मुकाबला करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस का सहारा लिया जा सकता है, जो कि खासकर चाइना और अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं, दोनों के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, वो अपने किसानों को असिस्ट करते हैं। फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि इसको लेकर के उन्हें स्पेशल RDO भी प्रोवाइड किया गया है, उन्हें ध्यान होगा। तो इस तरीके से एक तो क्रॉप इंश्योरेंस वाला पॉइंट बन रहा है अगर हम आगामी के लिए बात करें एग्जाम्स के लिए। दूसरा मैंने कहा था कि अभी कुछ दिनों पहले हमने बातें की थी दालों के प्रोडक्शन को लेकर के, वो एक क्वेश्चन बन रहा है। और तीसरा डेफिनेटली गन्ने का भी सवाल खड़ा होता है, ये भी टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सीनेरियो में है। तो मित्रों इसके साथ ही साथ इसी खबर के दौरान अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको याद होगा कि एक वर्ड आया था कि ये जो 4.5 रुपए प्रति क्विंटल जो सब्सिडी देने का फैसला किया गया है गन्ना किसानों को, उसका जो फैसला लिया है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आपको ध्यान होगा कि इसी साल अभी प्री जो एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया था कि यह निर्णय कौन लेता है। बस यही थोड़ी सी ध्यान देने की बात होती है, या और यदि स्टूडेंट थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है तो आप देखेंगे कि सिविल सर्विस उसके लिए फिर उतना कठिन नहीं रह जाता जितनी वो हमें ऊपर से दिखाई देती है। एक सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए मुझे जो सच में जिसे मैं बार बार आप लोगों से शेयर भी करता हूं, बहुत अच्छा जो तरीका दिखाई मालूम पड़ता है वो ये है, एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को या पॉलिटिकल साइंस की किताब को सिलसिलेवार पढ़ रहे हैं और वो आपको पढ़ना भी चाहिए, आपने 2-3 बार पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान भी रख ली, याद भी कर लिया, कुछ नोट भी कर लिया, जो भी आपका अपना तरीका है वो आपने किया। अब फिर होता यह है कि जब भी कोई घटना घटती है तब बेहतर होता है कि हम उससे रिलेटेड चैप्टर को एक बार देख लें, तब वो हमारे दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठती है। और मुझे लगता है कि शायद सब्जेक्ट को दोहराने का इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। साथ ही साथ हम सब्जेक्ट को बड़े अप्लाइड तरीके से उसके माध्यम से समझ सकते हैं, उस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बात आती है और अगर आपकी जगह मैं तैयारी कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं पॉलिटिकल साइंस की अपनी किताब उठाता और उसमें मैं देखता कि ये जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं, जो कैबिनेट कमेटीज होती हैं, ये क्या होती हैं, क्या उद्देश्य है, कैसे बनती हैं, कितने तरह की हैं, क्या क्या हैं, इस चैप्टर को मैं डेफिनेटली उठा करके देखता और देखने के बाद फिर मैं उस पर अपनी कमांड बनाने की कोशिश करता। तो इस तरह से मंत्रिमंडलीय समिति इस परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे आप अगर आप मंत्रिमंडलीय समिति को देखेंगे तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए मैं अभी यहां आपसे शेयर करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद भी पॉलिटिकल साइंस की किताब में इस चैप्टर को पढ़ें। पहला तो यह है कि इन समितियों का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है कि इस तरह की समितियां बनाई जानी चाहिए, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये सच पूछे तो कैबिनेट अपनी सुविधा के लिए कुछ कमेटीज बनाती है, 2 तरह की जनरली कमेटी होती है, एक तो परमानेंट कमेटी होती है, जैसे पॉलिटिकल मामलों की कमेटी, तो ये एक परमानेंट कमेटी होती है क्योंकि रोजाना आपको राजनीतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती है वो आर्थिक मामलों की होती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कमेटी होती है, जो इकोनॉमी के मामलों पर डिसीजन लेती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेटली एक इसी तरह की जो कमेटी होती है वो अपॉइंटमेंट से संबंधित होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हायर लेवल की जो पोस्ट्स होती हैं, लगातार ऑफिसर्स रिटायर होते रहते हैं, नए वहां की नियुक्तियां करनी होती हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी। और इसी तरह से एक होती संसदीय मामलों संबंधी समिति, क्योंकि संसद में क्या होना है क्या नहीं होना है तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये जो चार कमेटियां होती हैं ये एक तरह से परमानेंट कमेटी होती हैं, बाकी एडहॉक कमेटी होती हैं, जैसी जब जरूरत पड़ी उसको बना दिया गया और इसके बाद जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको खत्म कर दिया गया। मित्रों, इन कमेटीज की जो वर्किंग है, बाकी चीजें हैं वो गवर्नमेंट अपने ढंग से फैसले करती है, लेकिन आप इस बात को तो बड़े अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये जो कमेटीज होती हैं इनके भी हेड प्राइम मिनिस्टर ही होते होंगे, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि कौन होगा। ज्यादातर कमेटीज में प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, कुछ कमेटीज के हेड के रूप में वो जो हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको रख दिया जाता है, वो उसको हेड करते हैं और ये सब कमेटियां एक तरीके से सरकार को डिसीजन लेने में मदद करती हैं, सरकार को ये इनपुट प्रोवाइड करती हैं, बताती हैं ये डिसीजन लिया जाना चाहिए और अगर कैबिनेट को ठीक लगता है तो वो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेती है और अगर ठीक नहीं लगता है तो वो उसके अपने ऊपर है कि वो उसके बारे में क्या करती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक तरीके से कैबिनेट अपने काम के बोझ को कम कर सके, उनको चीजें ज्यादा ठोस तरीके से मिल सकें, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट है, एक संगठनात्मक उपाय आप कह सकते हैं ये किया गया है। तो मित्रों, ये कैबिनेट समितियों के बारे में थोड़ी सी मैंने आपसे चर्चा की और चूंकि आप देख रहे हैं कि जो गन्ने का मामला है वो चूंकि एक आर्थिक मामला है, इसीलिए बट नेचुरल है कि इसका जो निर्णय लिया वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया। मित्रों, अब एक दो छोटी छोटी और खबरें हैं। पहली तो ये कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत का कोयले की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 10% शेयर्स डिसइन्वेस्ट किए जा रहे हैं। 10% शेयर्स मार्केट में आएंगे और उससे सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के मैं इससे पहले भी काफी बातें कर चुका हूं और खासकर अभी भी जो क्लासेज हुई थी और इससे पहले भी जो क्लासेज हुई है उसमें मैंने पूरे के पूरे डिसइन्वेस्टमेंट की आपको थ्योरी बताई है। स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। इसके पीछे सिर्फ उद्देश्य सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करना ही नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट की प्रणाली में सुधार लाना भी कहीं ना कहीं होता है। एक रिस्पॉन्सिव कंपनी को एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। और ये कैसे होता है इसके बारे में पहले भी ऑडियो में चर्चा की जा चुकी है, यहां मैं दोहराने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। मित्रों, एक जो तीसरी जो खबर थी, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, वो यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने आतंकवाद, जो विश्व में आतंकवाद बढ़ रहा है उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और वो ये है कि इन आतंकवादी संगठनों की जो फंडिंग होती है, इनको जहां से पैसा मिलता है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि इनको पैसा न मिल सके, और उन कामों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जहां से ये पैसा कमाते हैं। जैसे दो तीन चीजों का उन्होंने जिक्र भी किया, जाली नोट के संगठन जाली नोट मार्केट में लाते हैं और फिर उससे उन काफी पैसा कमाते हैं। खासकर जो ड्रग्स होती, मादक पदार्थ जो होते हैं उनकी तस्करी में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है और उससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। आपको ध्यान होगा, दो दिन पहले रशिया के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति पुतिन साहब ने ये बात कही थी कि यहां तक कि ये जो आईएस संगठन है ये पेट्रोलियम का व्यापार तक कर रहा है, ये उन्होंने बात कही। तो ये जितने भी सोर्सेस हैं जहां से इनको पैसा मिलता है, अगर इन स्रोतों को किसी तरीके से बंद किया जा सका तो डेफिनेटली इनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ेगी और हो सकता है कि एक बहुत जल्दी वो समय आए जबकि ये आतंकवादी गतिविधियां नहीं के बराबर रह जाएं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है। तो खासकर सिविल सर्विस के स्टूडेंट के लिए ये इस मायने में जरूरी है कि अगर आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए या आतंकवाद के विरोध में क्या कदम उठाए जाने चाहिए ये आपसे पूछा जाता है तो आप ये आर्थिक प्रतिबंध वाली बात कह सकते हैं कि इनकी जो आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है उसे कमजोर किए जाने की कोशिश होनी चाहिए। मित्रों, एक फिर छोटी सी खबर थी अंतिम, जो अभी न्यूज में तो थी लेकिन पूरी नहीं हुई है, कि दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल विधेयक को स्वीकृति दी है। अब बट नेचुरल है कि ये विधेयक अब विधानसभा में रखा जाएगा और इसके बाद विधेयक का रूप लेगा और बट नेचुरल है कि ये पारित भी हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आप पार्टी का बहुत जबरदस्त बहुमत विधानसभा में है, तो ये एक छोटी सी खबर थी। और आपको मालूम है कि अन्ना हजारे साहब ने जो आंदोलन किया था दिल्ली में, वो खासकर लोकपाल बिल को लेकर के ही था, और उसी आंदोलन से ही अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल साहब, वो इमर्ज एक नेशनल लीडर के रूप में या पॉलिटिकल लीडर के रूप में आप कह लीजिए इमर्ज हुए थे। तो ये वायदा अब वो लगभग लगभग पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बीच बीच में लोग ये प्रश्न उठाते थे कि केजरीवाल साहब लोकपाल बिल के इतने बड़े समर्थक थे, तो अभी तक दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली के लिए वो लोकपाल बिल क्यों लेकर नहीं आए हैं। तो मित्रों, इन खबरों के बाद अब मैं आता हूं न्यूज क्लिपिंग्स पर। न्यूज पेपर्स की कुछ क्लिपिंग्स हैं, उसमें कोई क्लिपिंग्स ऐसी नहीं है जिसको लेकर के मैं अलग से आप लोगों से डिस्कस करूं मित्रों, इसलिए मैं किसी की अलग से चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्लिपिंग्स को जो थी मैंने अंडरलाइन कर दी है, नॉलेज सेंटर पर ये क्लिपिंग्स अवेलेबल हैं, आप ये क्लिपिंग्स देख लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी नौजवान साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इनमें से तीन दोस्तों के मैं आज नाम ले रहा हूं, वो हैं शैंकी कोट द्वारा उत्तराखंड से, नरेंद्र प्रसाद निराला दरभंगा बिहार से, और नीतीश कुमार बेगूसराय आप भी बिहार से। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।